Reverend Bhante and Dhamma friends, we have all assembled here for these 2 days to understand what is Dhamma or Dharma and how to apply it in life. Dhamma is a way of life, a healthy, harmonious, wholesome way of life, a life full of morality, full of moral ethics. Dhamma is an art of living. How to live peacefully and harmoniously within, and how to generate nothing but peace and harmony for the atmosphere around, so that others also can live in peace and harmony. A good way of life, where one does not harm others. One does not perform any action, physical or vocal, which harms and hurts other beings. One abstains from killing. By killing, you harm others. You disturb the peace of the society. One abstains from stealing. One abstains from sexual misconduct. One abstains from speaking lies, speaking harsh words, words of backbiting, slanderous words, useless words, meaningless words, wasting one's own time and wasting the time of others. And to abstain from all these improper, immoral activities, one has to abstain from taking intoxicants. Once you start taking intoxicants, you become slave of that intoxication, and in spite of understanding fully well at the intellectual level that you should not perform such unwholesome actions, yet because of intoxication, one keeps on performing such actions. So abstain from all intoxicants. At the apparent level, it looks that living such a moral life without harming anybody, without hurting anybody, you are creating peace and harmony in the society. That means you are obliging others. But this is not the totality of the reality. It appears to be so. But the fact is that when you abstain from performing unwholesome physical and vocal actions, you are obliging yourself. And Dhamma will make you understand why, how. Because Dhamma is law. Dhamma is nature. Dhamma is universal law of nature, which is applicable on everybody. And this law you can understand not by attending such seminars, not by playing intellectual games, not by accepting something at the devotional or emotional level, but by realizing the truth within yourself, the law of nature, how it works. Once you start investigating the truth within yourself, the law of nature will reveal itself. When you are harming somebody, you hurt somebody, you are killing somebody, your intellect says, no, it is not good. Your devotion towards the teaching of the enlightened one says, no, not good. You should not do this. Don't harm others. But when you go deep inside, then you understand that when you abstain from harming others or hurting others, you are actually abstaining from harming yourself. You can't hurt anybody. You can't harm anybody unless you have first harmed yourself. You can't kill anybody unless you have first killed the peace and harmony within yourself. Without generating tremendous amount of anger, hatred, ill will, animosity, you can't kill anybody. And when you generate anger or hatred or ill will or animosity, you are the first victim of your negativity. You become so miserable. How to understand that? Unless you start observing the reality within yourself, within the framework of this body, the interaction of mind and matter, you generate any negativity in the mind and it influences the body, the matter. There is bound to be an unpleasant sensation in the body. And that unpleasant sensation will again influence the impurity of your mind, the negativity of your mind. You generate more negativity. The more unpleasant sensation in the body, the more unpleasant sensation in the body, the more negativity, a vicious circle starts. And you are a victim of this vicious circle. Misery. Misery. Pubbe hanati attanam paccha hanati sopare. These are the words of the enlightened person. Don't accept it because they are said by an enlightened person, because they are said by your teacher, will not help you at all. When you start realizing this fact inside, the truth of the interaction of mind and matter inside, it will become so clear. You will start understanding that, look, I have started harming myself. Before harming anybody, I start harming myself. And nobody will like to harm oneself. Even unintentionally, you place your hand on the fire, burning fire. It hurts you. Again, by mistake, you put your hand on the burning fire. It hurts you. A few times, you hurt yourself by touching the burning fire. You will stop from doing that. No, this is not good. It harms me. In the same way, if you start experiencing the truth inside, the truth which is not merely to be accepted at the intellectual level, not merely to be accepted at the emotional or devotional level, at the actual level. Look, I've generated anger and I've become so miserable. I've generated passion, I've become so miserable. I've generated ego, I've become so miserable. You keep on realizing this once, twice, 10 times, maybe 100 times, and then you start abstaining. No, this is not good for me. No one wants to harm oneself. Ignorantly we keep on harming ourselves. We do not know what is the truth within. The truth outside is an apparent truth. This is only one dimension of the truth. One feels that I am unhappy because of things outside. because of people outside who are behaving in a wrong way, because of situation outside which is very unpleasant to me. Oh no, this is all apparent truth. An apparent truth is a truth seen from only one angle, from one dimension. This is not the totality of the truth. This is partial truth. And partial truth is a distorted truth, far away from the actual truth. When you see the truth from different dimensions, then you start understanding the totality of the truth, and then every decision that you take is a healthy decision, is a good decision for you, and good decisions for others also. For example, somebody has abused you, somebody has misbehaved, somebody is insulted. As a result, you become very miserable. Then all the time you keep on thinking, I became miserable because so-and-so misbehaved, so-and-so insulted me, so-and-so abused me. Well, at the apparent level it is true, but not true at the deep, real level. Not true. Somebody is insulting me and my becoming miserable, there is a gap between these two, a missing link. This is what the enlightened person find out, the missing link. Somebody is abused. What is abuse? Some words. Some words have come to my ear. If I start realizing the truth of interaction of mind and matter, the influence of one over the other, dividing, dissecting, disintegrating, dissolving, like a scientist, a research scholar, what is happening inside? True, somebody is abused. Certain words have come to my ears. Then you will notice, if you are a good, real scientist, to explore the truth within yourself at the experiential level, you will notice some words have come to my ears. A part of the mind, which is the job of this part of the mind, is cognize. Some words have come, that's all. This part can do nothing else. Something has come in contact with my ear sense too. Immediately another part of the mind will raise its head. What? What is this sound which has come in contact? Oh, some words. What words? This second part of the mind, its job is to recognize with all the memory of the past, with all the experience of the past, it will recognize words. What words? Oh, words of abuse. Then this part of the mind also gives evaluation to it. Words of abuse. Oh, very bad. Words of abuse. Very bad. Then the third part of the mind will raise its head and start working. The words that have come has already created some vibrations in the body. The entire physical structure, the entire mental structure is nothing but mass of vibrations. Sabbo pajjalito loko, sabbo loko pakampito, pakampito. This was realized by the super scientist of our country, the greatest scientist of the world, mind and matter. The entire universe is nothing but vibration, vibration, vibration. The entire physical structure, the mental structure, vibration, vibration. The words that came, they are nothing but vibration, vibration. This mass of vibration comes in contact with another vibration. Another vibration has started. Some new type of vibration has started. Like you strike a gong. You strike a gong at a particular place and the entire gong starts vibrating. This sound has come in the ear sense door. And the entire structure of the body and mind starts vibrating. A neutral vibration has started. When the second part of the mind says, this is abuse, it is too bad, then immediately you will notice that this vibration, which was very neutral, when the words came in contact in your ear, this very vibration has turned into very unpleasant vibration. Very unpleasant. Then you will notice the third part of the mind. The job of this third part of the mind is to feel. It starts feeling very unpleasant. Very unpleasant. And then immediately the fourth part of the mind starts working, and the job of the fourth part of the mind is to react. Very unpleasant. I don't like it. Stop it. I don't like it. Aversion. Aversion. Hatred. Hatred. And every time you generate aversion, every time you generate hatred, you are a miserable person. Because you are observing inside now. You lost the balance of your mind. You lost the peace of your mind. The moment you generate anger, hatred, ill will, animosity, you become so miserable. This is law. This is truth. This is Dhamma. Not Buddhist Dhamma. Forget about it. Not Hindu Dhamma. Forget about it. No Jain Dhamma. No Muslim Dhamma. No Christian Dhamma. No Parsi Dhamma. No Sikh Dhamma. It is Dhamma. The moment you start making Dhamma a prisoner of this particular sect, a prisoner of that particular sect, Dhamma is no more Dhamma. It becomes a sect. And it is so harmful. Unless we understand what Dhamma is universal. Dhamma can't be Buddhist. Dhamma can't be Hindu. Can't be Muslim. Can't be Christian. Law of nature. Like we say, the nature of fire is to burn. This is Dhamma of the nature, to burn. If it does not burn, it may be anything else, but it can't be fire. If it is fire, it must burn. And when the fire burns, do you give it a label that this burning is a Hindu burning, or this burning is a Muslim burning, or a Buddhist burning, or a Jain burning, or an Indian burning, or a European burning, or an American burning, or a Russian burning? Burning is burning. This is law. In the same way, when one generates any negativity in the mind, any defilement in the mind, one has to burn. The nature of this defilement is to burn. Nobody can save you from burning. When you generate anger, you are bound to burn yourself. You started burning yourself. You may keep on calling yourself a Hindu, makes no difference. You may keep on calling yourself a Buddhist, makes no difference. Or a Christian, or a Muslim, or a Jain, or a Sikh, makes no difference. Or a Brahmin, or a Shudra, makes no difference. This is law. This is nature. And this is Dharma. Because we have forgotten Dhamma. Performing this particular rite or ritual, rite or ritual of this particular sect, people belonging to that particular sect feel, oh, we are very dharmic because we perform this particular rite, this ritual, this ceremony. Wonderful. I'm a dharmic person. Somebody belonging to some other sect performs rites and rituals and ceremonies of that particular sect, and he keeps on feeling, he keeps on deceiving himself that I'm a very dharmic person. A person from one particular sect may believe and have a strong faith in a particular philosophical belief and feels that I am a very dharmic person because I believe this particular philosophical belief. Another person from another sect will say, I am a dharmic person because I have got full confidence in this particular philosophical belief. Both are feel they are dharmic person. Quite possible. This person who is performing this type of rite or ritual, quite possible, he may be a dharmic person, and quite possible He may be totally far away from dharma, believing in this particular philosophy or that particular philosophy. Quite possible, one may be a dharmic person or may not be a dharmic person at all. Dharma has nothing to do with all these things. They are all sectarian things, and dharma is universal. Somebody performing this rite or that ritual and yet keeping the mind free from all the negativities, mind is pure. When mind is pure, again law of nature is such, when the mind is free from defilements, naturally it gets filled up with metta, love, karuna, compassion, mudita, joy, sympathetic joy, and upeksha, samta, equanimity. This is the nature of a pure mind. One starts enjoying so much of peace and harmony. The moment mind becomes pure, full of love, compassion, goodwill, and equanimity, it starts enjoying so much of peace, so much of harmony. Somebody performing this rite or that ritual may be enjoying this peace and harmony because one may be free from those defilements. Somebody performing that rite or ritual may be a dharmic person, free from defilements. Quite possible, at the same time, someone performing this rite or ritual may be full of defilements and a miserable person, far away from dharma. Or that performing that type of rite or ritual may be far away from dharma, all the time miserable. What these rites and rituals have got to do? What they have got to do with dharma? Believing in this philosophy or that philosophy? One may be a dharmic person, one may be totally away from dharma. What these philosophies have got to do? What these dogmas have got to do? Because we have forgotten what dharma is. We have forgotten the truth of dharma deep inside, the law of nature, which is universal. It does not make any discrimination. Anybody who places hand on the burning fire is bound to burn oneself. One may keep on saying that I am a Hindu and I perform this rite or that ritual. I believe in this philosophy or that philosophy. Why do you burn me? Nothing doing. One gets burned. Or I am a Buddhist or I am a Christian or I am Muslim. One gets burned. Similarly, one generates negativity in the mind is one is bound to get burned. One may keep on calling oneself by this name or that name, performing this rites or that ritual, believing in this philosophy or that philosophy, makes no difference at all. How to understand this law? By listening to these discourses, by playing intellectual games. Oh, wonderful, this looks very logical, this looks very rational, this looks very scientific. Well, I must apply this in my life. I should not generate negativity in the mind, because certainly if I generate negativity, I'm bound to become miserable. I should not do that. This is the wisdom. Wisdom you get in the burning heart, which passes away the moment you come out of it. This is the wisdom of such Dhamma assemblies. Wonderful, very good. The moment you go out of it, you forget all about it. Does not work. If these things would have worked, our country would have been the most dhammic country in the world. And what is happening? Our country is the victim, the biggest victim of sectarianism in the world. In the name of dharma, what we are doing? What is happening? In the name of dharma, what is happening? Because no one is interested to understand dhamma at the experiential level. Nobody is interested to realize dharma. Unless you realize dharma, all these sermons, I am sorry, they are not going to help. I know with my experience they didn't help me. From very childhood, I was born in a family full of dharmic atmosphere, the so-called dharmic atmosphere, of course. Nothing wrong in that, it was good, but at the same time, nobody understood what real dharma is. There was no possibility, there was no way to realize dharma within oneself. I got a second birth. That was the first birth coming out of the womb of my mother in a good family. But the second birth, when I got from my teacher, Sayaji Ubakhin, and came out of the shell of ignorance, started experiencing truth inside. Oh, this is dharma. Not Hindu dharma, not Buddha dharma, not Jain dharma, not Isai dharma. Dharma, this is law of nature. You generate any impurity in the mind, you are punished then and there. You break the law of a country, law of a state, you might get punished. Or somebody might start looking on the other side and you get away, you don't get any punishment. Or the punishment might come after years together, from this court to that court, to this court, that court, years together. In nature, law of nature, no. You can't miss the punishment, and it doesn't take time. Not that after death you will get this punishment or that punishment. Nature does not wait till you die. You have broken the law and you must be punished now, here, this very moment. You have broken the law. You generated negativity in the mind. The nature starts punishing you here and now. You are not broken the law. You live according to the law of the world, the nature. You keep your mind pure. You have generated metta, karuna, love, compassion, goodwill. The nature starts rewarding you then and there. It won't wait till you die. Here itself, then and there, you start experiencing so much of peace, so much of harmony. When one starts realizing this law of nature at the experiential level, one starts taking steps on the path of dharma. One starts attaining dharma in life. One starts experiencing dharma in life, and one starts getting fruits of dharma, the best sweet fruits of dharma in this very life. But first one has to liberate dharma from the bondage of the sects, different sects, from the shackles, from the chains of these sects. I would rather say one should liberate oneself from the bondage of the sects, the shackles of the sects, the chains of the sects. Every sect, this sect or that sect, takes you far away from dharma. The moment you start realizing dharma, you can't remain sectarian. Impossible for you. Everything will become so universal for you. You can't differentiate between this man, this person or that person, this human being or that human being, or rather this being or that being. The law is applicable everywhere and everyone. Somebody has abused me. If I am a real dharmic person, as soon as somebody abuses me, I start understanding this is a miserable person. This is a sick person. How can one abuse me without generating anger or hatred? And the moment this person has generated anger and hatred, he's a sick person, very miserable. What I should generate? I can't throw more petrol on this person who is burning in fire of anger and hatred. I generate love, compassion, goodwill, a sick person. It is the problem of this person. This person is a sick person. Why I should take this problem on my head and become a sick person myself? Why I generate anger towards this person? Easy to understand and accept at the intellectual level. But at the real level, when somebody abuses you, all this will go away. You start abusing in retaliation. Because you have not understood dharma at the experiential level. You try to understand dharma only at the intellectual level. There was a time in this country when such dhamma places, dhamma centers, were not just limited to Igatpuri or Jaipur or this or that, throughout the country. And throughout the country, every householder was meditating, experiencing inside, what's happening within me? What's happening within me? Vipassana is not limited to a particular sect or a particular community or a particular caste. It's for everybody. Law of nature is for everybody. And one starts realizing this law by experiencing inside. Like your hospitals, your schools, So you have such kind of meditation centers where people start realizing the truth of the law of nature, and experiencing it within themselves, they start living a better life, a proper life, without harming others, that means without harming themselves, generating nothing but peace and harmony within, so that they live very peacefully and harmoniously, and giving such vibrations to the atmosphere around, so that the people who come in contact with us also live a life of peace and harmony. This is dharma. I would very much like you all, those who have taken courses in dharma, to explore the truth inside, better go much deeper. You just started scratching the reality inside at the surface level. The deeper you go, the deeper you go, the more you understand the reality at the very subtle level. And more you find that your mind is getting purified, purified, purified. And a time will come, then by nature it remains all the time pure, full of love, full of compassion. And that cannot happen unless you go deep inside and start purification, the process of purification. This has to be done by yourself. So those who have taken such courses, I would recommend them to go much deeper. 10-day course is just a beginning, to get just a boundary, outline of what dharma is. You have to take 20-day courses, you have to take 1-month courses, 1.5-month courses, maybe later on 3-month courses, so that you can understand. Go to the university level, just don't remain at the kindergarten level, this is just beginning. And those who have not come even to the kindergarten, I would request them to just take the kindergarten course and see what the truth is. The truth of this great country, the truth of the saints, the sages, the wise people of this country, the enlightened ones of this country. Don't make it just a thing of intellectual entertainment. Don't make it just a thing of emotional entertainment or devotional entertainment. Have actual experience. It is in your own good, for your own benefit, for your own peace, for your own harmony. I am recommending, because I have passed through all this, a life without dharma, and yet feeling myself a very dharmic person. I could give donations with 4 figures or 5 figures. I am such a big donor. Look, I am president of this temple or that temple. I am really a dharmic person. Didn't have a trace of dharma. Didn't have a trace of peace and harmony. And the life where I started taking steps on the path of dharma, and started experiencing the peace and harmony inside, because I have experienced both, I am recommending you, spare 10 days of your life, you are not wasting them. You will find that these were the best 10 days of my life. And keep walking on the path step by step, step by step, and reach the final goal of full liberation. Liberation from all the bondages of impurities, negativities, which make you so miserable, so that you can enjoy real peace, real harmony, real happiness. May all of you enjoy real peace, real harmony, real happiness. Adarniya Bhikshu, Dharam Premi Sajjano Sannariyo, एकत्र हुए हैं यहाँ 2 दिन के लिए कि समझें धर्म क्या है। जो आदमी ये समझता ही नहीं कि धर्म क्या है, वो उसे धारण कैसे करेगा, और जो आदमी धारण नहीं करेगा उसको धर्म के फल कैसे मिलेंगे, उसको धर्म का लाभ कैसे होगा। हमारे देश में पिछले 2000 वर्षों से बड़े दुर्भाग्य की बात हुई कि हम धर्म शब्द का अर्थ खो बैठे। जब से इस देश में आया हूँ और जहाँ कोई धर्म की बात कहता हूँ, तो जैसे ही धर्म शब्द का प्रयोग किया कि सुनने वाले के कान खड़े हुए, ये आदमी कौन से धर्म की बात करेगा, हिंदू धर्म की, कि बौद्ध धर्म की, कि जैन धर्म की, कि ईसाई धर्म की, कि मुस्लिम धर्म की, कि सिख धर्म की, कौन धर्म की बात करेगा? जैसे ये पुछल्ले लगाए बिना धर्म धर्म ही नहीं, ये कुछ लगना ही चाहिए उसके साथ, या तो हिंदू हो या बौद्ध हो या जैन हो या ईसाई हो या सिख हो, तब तो धर्म है। अरे भाई कहाँ उलझ गए। धर्म का अपना एक अस्तित्व है, इतना महान अस्तित्व है, इन खपच्चियों की जरूरत नहीं है धर्म को। ये खपच्चियाँ जैसे लगी कि धर्म कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया। धर्म को हिंदू धर्म कहते ही हिंदू प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा, कहीं अंधेरे में चला गया। हिंदू प्रमुख है। धर्म को जैसे ही बौद्ध धर्म कहा कि बौद्ध प्रमुख हो जाएगा, धर्म गया। जैन धर्म कहा तो जैन प्रमुख हो जाएगा, धर्म गया कहीं। ईसाई धर्म कहा कि ईसाई प्रमुख हो जाएगा, मुस्लिम धर्म कहा कि मुस्लिम प्रमुख हो जाएगा, सिख धर्म कहा कि सिख धर्म सिख प्रमुख हो जाएगा, पारसी धर्म कहा पारसी प्रमुख हो जाएगा, यहूदी धर्म कहा यहूदी प्रमुख हो जाएगा, धर्म का क्या हुआ? क्या करना हमको धर्म से? इस देश में आए हुए इतने वर्ष हो गए, शिविरों में भी शिविरों के बाहर भी बहुत लोग ऐसे मिले जो बहुत छाती ठोक के कहते हैं मैं बड़ा कट्टर हिंदू हूँ, कोई कहता मैं बड़ा कट्टर मुसलमान हूँ, कोई कहता कट्टर बौद्ध हूँ, कट्टर जैन हूँ, कट्टर ईसाई हूँ। इतने बड़े देश में, करोड़ों की आबादी वाले देश में आज तक एक आदमी ये कहने वाला नहीं आया कि मैं कट्टर धार्मिक हूँ। बहुत कठिन है भाई, कट्टर धार्मिक होना बड़ा कठिन है। कट्टर हिंदू होना कितना आसान है, ये कर्मकांड कर लिए जो कि हिंदू परंपरा के मानते हैं, इस समाज के हैं, ये कर्मकांड कर लिए, वो व्रत उपवास कर लिए, ये पर्व त्यौहार मना लिए, ये तीज त्यौहार मना लिए, ये कोई उपवास कर लिए, ये कोई दार्शनिक मान्यता मान ली, मैं बड़ा कट्टर हिंदू। वैसे कोई कहेगा मैं बड़ा कट्टर बौद्ध, कोई कहेगा कट्टर मुसलमान, धर्म कहाँ गया? क्या है धर्म, यही भूल गए तो धारण कैसे करेंगे? जिसका अर्थ ही भूल गए उसको धारण कैसे करेंगे? आज की भाषा में, आज की भारत की अनेक भाषाओं में धर्म शब्द का वो पुराना अर्थ जो हजारों वर्ष पहले भारत में वही अर्थ चलता था, हजारों वर्ष पहले धर्म का अर्थ होता था स्वभाव, प्रकृति, निसर्ग, निसर्ग के नियम, कुदरत के कानून, विश्व का विधान, उसे धर्म कहते थे। तो आज की हिंदी में भी, आज की भाषाओं में भी, भारत की भाषाओं में भी इस शब्द का वो अर्थ कभी कभी इस्तेमाल होता है। जैसे दूर की कोई गूंज हमें सुनाई देती है, हजारों वर्ष पुरानी गूंज सुनाई देती है, जब हम कहते हैं अग्नि का धर्म है जलना और जलाना, तो उस वक्त तो नहीं पूछते ना कि हिंदू धर्म है कि बौद्ध धर्म है कि जैन धर्म है। जब मैं बोलने लगता हूँ तो पूछते हैं आप कौन से धर्म की बात करें, आप तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, विपश्यना तो बौद्ध धर्म की है। अरे बाबा विपश्यना सबकी है, तुम समझो तो धर्म किसको कहते हैं, अग्नि को क्यों नहीं पूछते आप कौन से धर्म वाली अग्नि हो, आप बौद्ध धर्म वाली हो कि जैन धर्म वाली हो कि ईसाई धर्म वाली हो, नहीं पूछते ना। धर्म है अग्नि, अग्नि है हिंदू अग्नि है कि बौद्ध अग्नि है कि जैन अग्नि है कि ईसाई अग्नि है, क्या लेबल लगाओगे उसे? ऐसे कहें बर्फ का धर्म है शीतल होना, शीतल करना, कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म है कि बौद्ध धर्म है कि जैन धर्म है कि ईसाई धर्म है? स्वभाव है उसका, उसकी प्रकृति है, नहीं तो बर्फ बर्फ नहीं। अगर शीतल नहीं होती और शीतल नहीं करती तो बर्फ बर्फ नहीं, गर्म नहीं होती और गर्म नहीं जलती नहीं और जलाती नहीं तो अग्नि अग्नि नहीं, उसका धर्म है। ऐसे कहते हैं जितने प्राणी हैं सभी जरा धर्मा हैं, व्याधि धर्मा हैं, मरण धर्मा हैं। तो केवल बौद्ध ही है क्या जरा धर्मा, व्याधि धर्मा, मरण धर्मा? केवल हिंदू ही है क्या, केवल मुस्लिम ही है क्या? अरे सारे प्राणी हैं भाई, धर्म है, ये स्वभाव है। जो जन्म लेगा वो जर्जरित हो करके मरेगा ही, दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं बचा सकती, ये धर्म है। ठीक इसी प्रकार हमारे देश के महापुरुषों ने, संतों ने, हमारे देश के अरहंतों ने, बुद्धों ने अंतर्मुखी होकर के धर्म का निरीक्षण करना शुरू किया तो देखा क्या धर्म है। अरे स्वभाव है, हमारे चित्त में हमने जो धारण किया उसका क्या स्वभाव है, चित्त में हमने कैसी वृत्ति धारण की उस वृत्ति का क्या स्वभाव है, हमने क्रोध धारण किया कि द्वेष धारण किया कि दुर्भावना धारण की, अहंकार धारण किया कि वासना धारण की, जो विकार धारण किया
उसका स्वभाव क्या है? उसका एक ही स्वभाव है, वो हमें व्याकुल बनाएगा और आसपास के सारे वातावरण को व्याकुल बना देगा। जैसे बर्फ का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव है, जिस पात्र में अग्नि जलेगी उस पात्र को जलाएगी और उसके आसपास के वातावरण को गर्मा देगी, जो उसके संपर्क में आएगा वो ही जलने लगे। इसी तरह से हम अंदर विकार जगाएंगे तो पहले तो हमें जलाएगा ये विकार, बहुत व्याकुल बनाएगा, बहुत व्याकुल बनाएगा, और फिर सारे वातावरण में फैलना शुरू हो जाएगा। उस समय जो हमारे संपर्क में आएगा वही जलने लगेगा, वही व्याकुल हो जाएगा। स्वभाव है भाई, जब मैं अपने भीतर क्रोध जगाता हूँ, द्वेष जगाता हूँ, दुर्भावना जगाता हूँ, तो क्या लेबल लगाओगे उसे? कहोगे अब के जो क्रोध आया ये तो हिंदू क्रोध आया, अब के जो आया ये मुस्लिम आया, अब के आया वो बौद्ध आया, लगाते हो लेबल, क्या लगाओगे? और उससे जो जलन हुई, दुख हुआ, व्याकुलता हुई, उसको लेबल लगाओगे? ओ ये जलन तो हिंदू जलन है, ये तो बौद्ध जलन है। अरे कुदरत का कानून है भाई, विकार जगाओगे और जलोगे। अपने को हिंदू कहते रहो, बौद्ध कहते रहो, जैन कहते रहो, ईसाई कहते रहो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपने को ब्राह्मण कहो कि शूद्र कहो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्रोध जगाया है ना, वो इस बात को नहीं देखेगा ये आदमी अपने आप को क्या नाम से पुकारता है, इसके माथे पर क्या लेबल लगा है, ये कौन कौन से कर्मकांड पूरे करता है, ये कौन कौन सी दार्शनिक मान्यता को मानने वाला है, कुछ नहीं पूछेगा। जगाया क्रोध कि जलना ही होगा, दुनिया की कोई शक्ति हमें नहीं बचा सकती। इस देवी को माने कि उस देवता को माने कि इस ईश्वर को माने कि उस ईश्वर को माने कि बिल्कुल किसी को न माने, जलना ही होगा, क्रोध जगाया है ना। और ठीक इसी प्रकार क्रोध न जगा करके चित्त को निर्मल कर लिया, मैत्री से भर जाएगा, करुणा से भर जाएगा, मुदिता से भर जाएगा, उपेक्षा भाव से भर जाएगा। अरे इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी। तो उस मैत्री को, करुणा को, उपेक्षा को, मुदिता को बौद्ध कहेंगे कि जैन कहेंगे कि हिंदू कहेंगे? अरे गुण हैं, निर्मलता हृदय का एक गुण है और निर्मल होने से ये उसमें सद्गुण आते हैं और उसके परिणाम स्वरूप शांति आती है। तो इस शांति को हिंदू कहें कि बौद्ध कहें कि जैन कहें, क्या कहें? इसी को धर्म कहा आपने यहां। और ये धर्म जब तक अनुभूति पर नहीं उतरता तब तक भाई बुद्धि विलास का विषय रहेगा, सारे जीवन बुद्धि विलास करते चले जाएंगे। मैं बहुत उलझा इसमें, अपने जीवन के कितने बरस गंवाए मैंने, याद करता हूं तो लगता है कि कितने बरस गंवाए ऐसी सभाओं में इकट्ठे हो करके। अरे हमारी गीता ये कहती है, हमारा उपनिषद ये कहता है, देखो ऐसा है ऐसा है, कोई कहे हमारा धम्मपद ये कहता है ऐसा है ऐसा है, कोई कहे हमारी कुरान ऐसी है ऐसी होगी। भाई तू कैसा है? मैं कैसा हूँ? वो तो नहीं देखा ना, वो कहती है और हम लड़े जा रहे हैं, हमारा अच्छा है तुम्हारा बुरा है। क्या हो गया, कितना समय गंवाया, कितना समय गंवाया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और जैसे ही अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर देखना शुरू किया, दुनिया ही बदल गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अरे अपने भीतर देखे बिना बात समझ में आती नहीं भाई, ये बुद्धि की अपनी एक सीमा होती है और ये बात उस सीमा से बहुत आगे है, क्या समझ पाओगे? होगा नहीं, जब तक अनुभूति पर नहीं उतरे तब कुछ होगा नहीं। कानून तो वो कबू है जो बाहर है, जो भीतर है, लेकिन जब तक अपने भीतर जाकर के सच्चाई को नहीं देख लोगे तब तक कानून समझ में नहीं आएगा। कि जन नानक बिन आपा चीने ओ कटे न भ्रम की काई रे। जान गया नानक बातें नहीं करता केवल, इस तरह के बुद्धि विलास में उसको कोई रस नहीं है। अंतर्मुखी होकर जान लिया, क्या जान लिया? जान लिया कि सच्चाई क्या है, कुदरत का कानून क्या है, धर्म क्या है। तो कहता है जन नानक बिन आपा चीने, अपने आप को अपने बारे में जो सच्चाई है उसको अनुभूति से नहीं जानोगे तो कटे न भ्रम की काई रे। सारा जीवन भ्रम में बीत जाएगा, भ्रांति में बीत जाएगा। खूब समझते रहोगे बड़ा धार्मिक हूँ मैं, बड़ा धार्मिक हूँ, देखो अमुक मंदिर में जाके पूजा कर आया, अमुक मस्जिद में जाके नमाज पढ़ आया, अमुक गिरजाघर में जाकर के प्रेयर कर आया, अमुक गुरुद्वारे में जाके पाठ कर आया, अमुक बौद्ध चैत्य पे जाके नमस्कार कर आया। अरे मेरा क्या कहना, ये जश्न मनाने वाला, ये उत्सव मनाने वाला, ये पर्व मनाने वाला, मैं ऐसा। बावला आदमी तू कैसा रे, तेरे भीतर क्या हो रहा देखा? कुदरत के कानून को समझा? धर्म क्या है उसे समझा, उसका अनुभव किया और अनुभव करके धारण किया? नहीं करता ना, उसकी जरूरत नहीं। किम सच्चिया रहो ये, वो सच्चाई कब मालूम होगी? जब सच्चियारा होगा। और सच्चियारा कब होगा? अनुभूति पर सत्य उतरेगा। तो किम सच्चिया रहो ये, किम कूड़े तुट्टे पाले। भारत के इस महान संत ने भारत की भाषा को एक नया शब्द दिया, सच्चियारा। दुखियारा शब्द चलता था भारत में, जिसके पास सुख नहीं वो दुखियारा। सुखियारा शब्द भी चलता था, जिसके पास दुख नहीं वो सुखियारा, जिसके पास सुख नहीं वो दुखियारा। इसने नया शब्द दिया सच्चियारा, जिसके पास झूठ नहीं। ये वाणी की झूठ की बात नहीं करता, वो जरा भी नहीं करता। क्या झूठ? कि जो हम बिना ही अनुभव किए कुछ माने जा रहे हैं, वो तो झूठ ही झूठ है ना। तूने तो अनुभव नहीं किया ना, सुना है, कहीं पढ़ा है, उस पर बहुत बहुत बुद्धि लगाई है, तो तेरे लिए झूठ है रे, वो सच नहीं है। अनुभूति पर उतरे तो सच है। तो किम सच यारा होविए, किम कूड़े तुट्टे पाले। ये झूठ की सारी परत उतार दो। ये सुनी सुनाई बातें, ये पढ़ी पढ़ाई बातें, ये हमारी परंपरा की बातें, ये हमारे शास्त्रों की बातें, ये हमारे गुरु महाराज की बातें, ये हमारे अमुक दर्शन शास्त्र, सब छोड़ो, एक तरफ रखो। क्या अनुभव हो रहा है तेरे लिए? वही सत्य है। इस क्षण मेरे भीतर मुझे ये अनुभव हुआ, इस क्षण का तेरे लिए वो सत्य। अगला क्षण जैसे ये क्षण बना, उस समय क्या अनुभव हुआ, उस क्षण का तेरे लिए ये सत्य। यूं क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण, यूं सत्य सच के सारे चलेगा। तो आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक हो सी भी सच। सच के सहारे चलते 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 परम सत्य तक पहुंच जाएगा। और जहां किसी कल्पना का सहारा लिया, मान्यताओं का सहारा लिया, सुनी सुनाई बातों का सहारा लिया, पढ़ी पढ़ाई बातों का सहारा लिया, वहां उनके सहारे चलते 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 किसी बड़ी कल्पना में उलझ के रह जाएगा। सच्चाई तो कहीं गई तुम्हारी, तो अनुभूतियों पर। किम सच्चियारा होविए, किम कूड़े तुट्टे पाले। तो काहू कुमर जाई चलना, ओ नानक लिखिया नाले। हुकुम रजाई चलना, एक और नया शब्द दिया इस महापुरुष ने। हुकुम, क्या हुकुम है? आप उसे कुदरत कहो, उसे प्रकृति कहो, कहना चाहो तो कोई परमात्मा कहो, कोई ईश्वर कहो, कोई अल्लाह ताला कहो, चाहे सो नाम लो। क्या हुक्म है उसका और क्या रजा है उसकी? तो हुकुम रजा, ये कुदरत के क्या हुक्म है उसकी, क्या रजा, वो क्या चाहती है, उसके अनुसार चलना है। तो क्या हुक्म है? अरे अंदर जाके सच्चाई देखे बिना तुझे कैसा पता लगे क्या हुक्म है? अंदर जाके देखना शुरू कर देगा तो समझ में आएगा कि ये प्रकृति कहती है कि तू जैसे ही विकार जगाएगा मैं तुझे दंड दूंगी, तुरंत दंड दूंगी, व्याकुल बना दूंगी, और जैसे ही विकार को अलग करेगा मैं तुझे पुरस्कार दूंगी, बड़ा सुखी बना दूंगी, बड़ा शांत बना दूंगी। अरे ये नियम है, ये रजा है, ये हुक्म है। तो हुक्म रजाई चलना, ये सच्चियारा हुई बिना कैसे हुक्म जाएगा पता ही कैसे लगेगा? तो का नानक लिखिया नाले, ये पोथियों में नहीं मिलेगा भाई, ऐसे प्रवचनों भी नहीं मिलेगा, ये चिंतन मनन करके भी नहीं मिलेगा। ये तो अपने भीतर लिखा हुआ, उसकी अनुभूति जब होने लगेगी, अच्छा ये शरीर है, ये चित्त है, ये दोनों का कैसे नाम और रूप का कैसे परस्पर संबंध है, और क्या होने से क्या हो जाता है, क्या नहीं होने से क्या नहीं होता है, ये सारा अनुभूति पर उतरे तो धर्म समझ में आया। तो धर्म समझ में आया तो उसे धारण करने लगे, समझ में नहीं आया तो क्या धारण करेंगे, कैसे धर्मवान बनेंगे? तो धोखा ही धोखा ना, धर्म के नाम पर जो हमने संप्रदाय खड़े कर लिए, बड़ा दुर्भाग्य हुआ देश का। धर्म और संप्रदाय आज के भारत में पर्यायवाची शब्द हो गए, दोनों का एक ही अर्थ हो गया। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, अरे जिनका धर्म से कोई लेन देन नहीं, दूर परे का भी लेन देन नहीं, वो कैसे धर्म हो गए? हिंदू धर्म कैसे हो गया, बौद्ध धर्म कैसे हो गया, जैन धर्म कैसे हो गया, ईसाई धर्म कैसे हो गया? धर्म धर्म भाई, इनको संप्रदाय कहते हुए किसी को चोट लगे, आज संप्रदाय बड़ा खराब शब्द हो गया लोगों के नज़रों में, शब्द अपने आप में बुरा नहीं है, जो समता प्रदान करे वो संप्रदाय, पर कहाँ समता प्रदान करे, वो तो विषमता प्रदान करने लगा आज, तो संप्रदाय बड़ा गर्हित शब्द हो गया, हल्का शब्द हो गया, मत कहो संप्रदाय, कहो समाज, ये हिंदुओं का एक समाज है, एक संगठन है, एक समूह है, मुसलमानों का एक समाज है, एक संगठन है, एक समूह है, ये सिखों का है, ईसाइयों का है, यूँ उनको धर्म मत कहो भाई, धर्म कहने से धर्म चला जाएगा, धर्म को भूल जाओगे, धर्म तो सबका होता है, अरे जो सार्वजनीन है, जो सर्वव्यापी है, जो घट घट में समाया हुआ है, अणु अणु पर जिसकी हुकूमत चलती है, जो अणु अणु को धारण करता है, अणु अणु जिसे धारण करती है, वो कॉस्मोस लॉ, प्रकृति का नियम, सारे विश्व का विधान, उसे छोटा सा बना दे, ये हिंदुओं का, ये बौद्धों का, ये जैनियों का, ये ईसाइयों का, ये तो अपमान हुआ ना धर्म का, जो अनंत है, अपरिमित है, उसे सीमित बनाया, उसे परिमित बनाया, अरे धर्म बेचारे का क्या अपमान होगा, हम अपना अपमान किए जा रहे हैं, अपनी हानि किए जा रहे हैं, इससे बचो, जिस दिन देश इस दुर्भाग्य के बाहर निकल जाएगा, धर्म को इन सब से अलग कर देगा, हिंदुओं का संगठन होना कोई बुरी बात नहीं है, बौद्धों का संगठन होना बुरी बात नहीं है, इसी तरह जैनियों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, अपने अपने सांसारिक रक्षा के लिए, अपने अपने तीज त्यौहार उत्सव मनाने के लिए, अपने अपने और कर्मकांड करने के लिए रहे, बशर्ते कि किसी दूसरे समाज के लोगों के मन को चोट न पहुंचे, ये ख्याल रखें, और मनाए, अपने अपने जश्न मनाए, अपने अपने उत्सव मनाए, अपने अपनी मान्यता माने, जो कुछ करना हो, धर्म से कोई लेन देन नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं, बिल्कुल संबंध नहीं, धर्म को बिल्कुल अलग रखें, धर्म का अपना एक अस्तित्व है, महान अस्तित्व है और स्वतंत्र अस्तित्व है, वो अस्तित्व जिस दिन भारत में आ जाएगा और भारत के साथ साथ सारे विश्व में फैल जाएगा, अरे बड़ा कल्याण होगा भाई, बड़ा कल्याण होगा, कभी ऐसा ही हुआ था, कभी ऐसा ही हुआ था, इस देश से धर्म क्या है, सारे देश में ये बात फैली, धर्म कैसे धारण करें, सारे देश में ये बात फैली, उसका कल्याण सारे देश को मिला, उसका मंगल सारे देश को मिला, और फैला तो सारे विश्व में फैलता चला गया, कितना बड़ा कल्याण हुआ, कितना बड़ा मंगल हुआ, धीरे धीरे उसे भूलते चले गए, धर्म को संप्रदाय बना दिया, धर्म को कर्मकांड बना दिया, धर्म को दार्शनिक मान्यता बना दी, धर्म को पर्व उत्सव बना दिया, धर्म को व्रत उपवास बना दिया, तो जो उससे लाभ मिलना था वो तो कहीं चला गया, लाभ तो मिलता नहीं, तो क्या करेंगे, अब झगड़ेंगे ही, और झगड़ेंगे भी धर्म के नाम पर झगड़ेंगे, बड़ा दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है, इस देश को क्या हो गया, जब एक समाज के लोग कहते हैं कि हमको अपना धर्म बचाना है, मुझे अपना धर्म बचाना है, और तब बचा पाऊंगा जब उस धर्म को नष्ट कर दूंगा, नहीं तो वो धर्म छा जाएगा मुझ पर, तो मेरे धर्म को नष्ट कर देगा, तो मुझे उस धर्म को इसलिए नष्ट करना है कि मुझे अपना धर्म बचाना है, तो मंदिर तोड़ेगा, मस्जिद तोड़ेगा, गुरुद्वारे फूंकेगा, गिरजाघर को आग लगाएगा, उसको मट्टी में मिलाएगा, सब करेगा, अपने धर्म को बचाना है ना, अरे क्या हो गया, कभी देखा तेरे भीतर, अरे तेरा धर्म तो उसी वक्त खतरे में आ गया जैसे ही तूने अपने मन में क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, दुर्भावना जगाई किसी के प्रति, तेरा धर्म खतरे में आ गया ना, अरे उसे बचा, अपने धर्म को बचाना है ना, तो धर्म क्या है यही भूल गए तो क्या बचाएंगे भाई, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करनी शुरू कर देगा, धर्म की हत्या करेंगे धर्म हमारा हनन करना शुरू कर देगा, ये पाठ तो रोज करते हैं लेकिन जन जानते हैं ना, समझते नहीं ना, तो समझेंगे हिंदू धर्म को बचाते हैं तो हिंदू धर्म हमारी रक्षा करेगा, बौद्ध धर्म को बचाते हैं बौद्ध धर्म रक्षा करेगा, जैन धर्म को बचाते हैं जैन धर्म रक्षा करेगा, मुस्लिम धर्म को बचाते हैं, अरे क्या हो गया तुम्हें, कहाँ उलझ गए, सारे देश को क्या हो गया, सोचना बंद कर दिया इस देश ने, जहाँ धर्म की बात आई वहाँ अकल में मजहब में अकल को दखल नहीं, बात मत करो, अकल की बात मत करो, सोचने की बात मत करो, विश्वास है ना हमारा, अरे तुम अंधविश्वास को धर्म मानने जा रहे हो, सोचना ही बंद कर दिया। करोड़ों की आबादी वाला देश सोचना बंद कर दिया, धर्म की बात आएगी तो सोचेंगे नहीं, ऐसे ही मानेंगे इसको। अरे भीतर जाओगे तो सारी बात समझ में आएगी कि कैसे धर्म के हनन करने से धर्म तुम्हारा हनन करता है, कैसे धर्म की रक्षा करने से धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। तुमने धर्म की रक्षा कब की? कि अपने को विकारों से अलग रखा, धर्म की रक्षा की तो धर्म तुम्हारी रक्षा करने लगा। कितने कितना सुख, कितनी शांति तुम्हें दे रहा है। और तुमने धर्म की हत्या की कि तूने विकार जगाने शुरू किए, तो जहाँ तूने विकार जगाने शुरू किए धर्म की तूने हत्या की, धर्म तेरी हत्या करने लगा। कि अरे सच्चाई तो ये थी और संप्रदाय के साथ जोड़ करके क्या हालत बना ली भाई। बहुत हुआ, बहुत दुख उठाया, धर्म के नाम पर बहुत अंधेरा फैलाया इस देश में। जागो, अब भी समय है। अब बहुत अंधेरा होता है तो ही प्रकाश की ज़रूरत होती है, बहुत दुख आता है तो ही सुख की खोज होती है, बहुत अशांति होती है तो शांति की खोज होती है। अब समय आया है। धर्म के नाम पर बहुत झगड़ चुके, बहुत लड़ चुके, बहुत अपनी हानि कर चुके, औरों की हानि कर चुके, अब होश जागे, सारे देश का होश जागे कि धर्म तो भीतर है। विकारों से विमुक्त होने का नाम ही धर्म है और विकारों से विकृत होने का नाम ही अधर्म है। इतनी सीधी सी बात जिस आदमी के जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी वो आदमी उतनी जल्दी धर्म के रास्ते चलने का प्रयत्न तो करने लगेगा, करने ही लगेगा, और खूब मंगल होगा, सचमुच बड़ा कल्याण होगा। इस तरह की तपोभूमियाँ जगह जगह देश में बने, बौद्धों की नहीं, जैनियों के नहीं, हिंदुओं के नहीं, मुसलमानों के नहीं, धर्म की, विपश्यना की, माने विशेष रूप से अपने भीतर देखना है तो सब वही देखेंगे जो सच्चाई है। एक को कुछ दिखेगा, एक को कुछ दिखेगा तो सच्चाई नहीं है। मेरी कल्पना कुछ और है तो मुझे अपनी कल्पना दिखाई दे रही है, उसकी कल्पना कुछ और है वो अपनी कल्पना को देख रहा है, तो क्या मिलेगा? हमारे यहाँ संतों ने बताया, महापुरुषों ने बताया, स्वयं अपने भीतर अपने आप को जानो। आपो जाने आपो आप, खुद अपने आप को जानने लगा तो रोग न व्यापे तीनों ताप, सारे भव रोग सारे भव ताप निकल जाएंगे। और जो अपने आप को नहीं जानता, अपने बारे की सच्चाई को नहीं जानता, वो कुदरत के कानून को नहीं जानता, वो धर्म को नहीं जानता, वो धर्म धारण करना नहीं जानता, बड़ा व्याकुल रहेगा। तो भाई ये सारी इस तरह की तपोभूमियाँ भारत में गांव गांव में होगी, होगी ही, इतना दुख देश में फैला है, होगी ही। और लोग इस प्रकार अंतर्मुखी हो कि अपने भीतर सच्चाई को देखेंगे, कल्पना नहीं, आपो जाने आपो आप, स्वयं अपने आप को जानो। आप किसी संप्रदायवादी के हाथ में ये बात चली गई, किसी दार्शनिक मान्यता को मानने वाले के हाथ में चलेगी तो कहता आत्मा से आत्मा को जानो, कठिनाई खड़ी कर ली। अपने आप को जानने की बात तो गई कहीं, आत्मा से आत्मा को जानो। अब करे बेचारा कल्पना, एक जानने वाली आत्मा ऐसी है जिसे जाना जा रहा है, वो आत्मा ऐसी है। अरे कल्पनाओं को छोड़ो भाई, किम सचियारा हो भी, किम कूड़े तुट्टे पाल, जो कुछ सुन रखा है, पढ़ रखा है, उसकी कल्पनाएं कर रखी हैं, उसको रखो ना एक और। क्या हो रहा है? सांस आ रहा है, कल्पना नहीं है ना? जा रहा है, कल्पना नहीं है ना? बस यहीं से शुरू करो, ये सांस आ रहा है, ये सांस जा रहा है, बस। और यूं इसको सच्चाई को देखते 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 और क्या हो रहा है? तो मानस और इस शरीर का परस्पर क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, और कैसे इस प्रकार प्रभावित होकर के विकार जाग रहे हैं, कैसे विकारों का संवर्धन हो रहा है, कैसे विकार हमारे सिर पर चढ़ रहे हैं और उसकी वजह से हमारी वाणी दूषित हो रही है, हमारे शरीर के कर्म, ये सारा प्रपंच देखना है भाई। कोई दार्शनिक मान्यता की बात को सिद्ध करके क्या मिलेगा? निकम्मी बात हुई ना। और इसको देखते देखते अगर हमने अपना स्वभाव बदल लिया, देख विकार जागा और हम उसे देख रहे, दुर्बल हो गया, नहीं बढ़ने पाया, विकार जागा और हमने नहीं देखा तो बढ़ते 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 सिर पर चढ़ जाएगा, हमें व्याकुल बना देगा। अरे इतनी सीधी सी बात कि हमको विकारों से छुटकारा पाना है भाई, और जब तक विकार भीतर हैं तब तक अपने को हिंदू कहें, बौद्ध कहें, जैन कहें, ईसाई कहें, सब कुछ हैं, धार्मिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। धर्म का हमसे कोई संबंध नहीं है, धर्म का हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, धर्म का खूब लाभ मिले। अरे ये धर्म का देश है, इस देश में इतने संत हुए, इस देश में इतने सत्पुरुष हुए, इस देश में इतने सद्गुरु हुए, इस देश में इतने अरहंत हुए, इस देश में इतने बुद्ध हुए। महान देश है, वो सामान्य देश नहीं है। इस देश के लोगों को धर्म मुबारक हो, शुद्ध धर्म मुबारक हो, और अपने भीतर जागा हुआ धर्म मुबारक हो, ताकि इस देश में सुख शांति आए और फैलती फैलती सारे पड़ोसी देशों में नहीं, सारे विश्व में फैल जाए। बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। धर्म जागे तो मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। जो जो आज की धर्म सभा में आए, उनमें से जिन्होंने भी पहले 10 दिन की साधना की है, उनसे चाहूँगा कि और गहराइयों में जाएं। अरे भाई, अभी तो किंडरगार्टन के क्लास में आए हो, बहुत गहरा है धर्म, बहुत गहरा है, इतना गहरा समुद्र है। जैसे आगे जाते जाओगे, उतने और अनमोल रत्न मिलते चले जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक किंडरगार्टन की क्लास भी नहीं ली, उनसे तो यही विनम्र प्रार्थना करूँगा, अपने अनुभव को देखते हुए करूँगा, भाई मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल जीवन, इस माने में अनमोल कि मनुष्य के जीवन में ही अंतर्मुखी होकर सच्चाई को देख सकते हैं। ये काम बेचारा पशु नहीं कर सकता, ये काम कोई पक्षी नहीं कर सकता, ये काम कोई कीट पतंग नहीं कर सकता, ये काम कोई सरीसृप नहीं कर सकता, ये काम कोई प्रेत प्राणी नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। मनुष्य को कुदरत ने या को परमात्मा ने इतनी बड़ी शक्ति दी है कि वो अंतर्मुखी होकर के सारे कुदरत के कानून को देख ले, अनुभव कर ले, धर्म को देख ले, अनुभव कर ले, और उसके अनुसार अपना जीवन ढाल ले। मनुष्य का जीवन मिला, और यह कल्याणकारी विद्या, खोई हुई विद्या फिर भारत में आई, खूब लोगों का कल्याण करे, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति।